بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تفسیر موضوعی میں آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا، گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کی نگاہ میں. انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی خوش فہمیاں پال لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اس نے خیال کیا ہے، تصور کیا ہے، ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا اور اسی کے مطابق وہ ثمرہ پائے گا. جبکہ اس دنیا میں بھی انسان کی سوچوں اور خیالوں کے مطابق حقائق نہیں ہیں، اور آخرت بے درجہ اولا اس طریقے سے ہے کہ انسان کی سوچوں کے مطابق حقائق نہیں ہیں. یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم پہلے حقیقت کی معرفت حاصل کریں اور پھر اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کو حقیقت میں ہدایت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق اتاری ہے. دنیا میں حقیقت رکھی ہے، کتاب حق کے ساتھ اتاری، انبیاء علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا اور دین کو دین حق قرار دیا ہے. یعنی ادیان میں جو حق دین ہے وہ دین دین اسلام حقیقت میں کہلائے گا. لہذا ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے اولین فریضہ یہی ہے کہ ہم حق سے تعلق قائم کریں، حقیقت سے تعلق قائم کریں. لیکن حقیقت سے تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کی معرفت رکھتا ہو، اسے سمجھتا ہو اور اس سے آشنائی رکھتے ہوئے انسان اس سے ایک تعلق قائم کرے. آج کے دن ہم ان خوش فہمیوں اور گمانات کے باب میں جس موضوع کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے اعمال کو بہت اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ قرار دینا، ہدایت یافتہ انسان کا اپنے آپ کو خیال کرنا. لہذا قرآن کریم نے واضح طور پہ خیال پردازی سے نفرت کا اظہار کیا ہے، کہ سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر مختال سے، جو خیال پردازی کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا. یا سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی مختال اور فخر و مباہات میں گرفتار شخص سے محبت نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے تعلق نہیں رکھتا، محبت کا تعلق نہیں رکھتا ہے. لہذا قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر اس بات کو تکرار سے ذکر کیا گیا ہے کہ خیالی دنیا آباد کیے رکھنا حقیقت سے دوچار نہیں کرتا، اور خیالی دنیا کے ذریعے سے انسان، تخیلاتی دنیا کے ذریعے سے انسان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے بعض ایسے امور یا ایسے نظریات ہیں جن کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان خیال پردازی کرتا ہے، گمانوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے. ان میں سے ایک ہمارے پاس باب تھا جس کو ہم نے مطالعہ کیا انسان کی تخلیق کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم انسان کی باہدف زندگی کا قائل ہے. دوسرا آپ نے اسی ضمن میں ملاحظہ کیا کہ انسان اقرار اور دعووں کی اساس کے اوپر جنت میں جانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت آزمائش اور ناپسندیدہ چیزوں میں رکھی ہے، نہ کہ انسان کی من پسند اور اس کے دعووں اور اقرار کے اوپر جنت رکھی ہے. تیسرا پہلو ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا، اور اس میں ہم نے اس چیز کو، کیونکہ یہ جو گمانات ہیں مختلف ہیں، اپنی خاص ترتیب سے ہم نے اس کو مطالعہ کیا تھا. تیسرا گمان جو ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا کہ اس کو قرآن کریم نے یکسر طور پر رد کیا ہے اور اس کو گمان قرار دیتے ہوئے انسان سے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کا بھی انجام وہی کرے گا جو مومنین کا انجام ہے. یعنی جس اجر و ثواب یا جس مقام اور منزلت کے مستحق مومنین ہیں مجرمین کو بھی وہاں پہ رکھ دیا جائے گا، یا برعکس کر لیں کہ جو پست اور عذاب کیا اس کی سطح مجرمین کی ہے مومنین کو بھی ادھر رکھ دیا جائے، ایسا اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا۔ تکرار کے ساتھ یہ قرآن کریم نے ذکر کیا۔ آج کے دن ہم ایک اور گمان کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو ان تینوں سے جدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے اعمال کو سب سے بہترین خیال کرنا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنا۔ یہ عموماً ایک مرض اور بیماری انسان کے نفس میں رہی ہے اور آج بھی ہے کہ وہ مشابہت کی اساس کے اوپر ایک حکم دوسرے کے اوپر لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز کی صف میں کھڑے نمازی ہیں تو ہر نمازی اپنے طور پہ اپنے آپ کو مقام بالا پہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بھی اول وقت فلاں فلاں طریقے سے نماز پڑھی اور اس نے بھی پڑھی تو دونوں برابر ہیں۔ یا اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک عمل دو بندے انجام دے رہے ہوں تو دوسرا اس اساس پہ اپنے عمل کو بھی اچھا شمار کرے گا کہ چونکہ وہ دوسرے کے ہمراہ اسی جیسا عمل انجام دے رہا ہے، اگر وہ قابل تعریف ہے تو حتماً یہ بھی قابل تعریف ہے۔ یعنی ظاہری عمل کی اساس کے اوپر ایک انسان اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگ جائے، جبکہ دین اسلام نے اصل اساس نیت کے اوپر، خلوص نیت پہ اور اس کی سعی اور کوشش کے اوپر قرار دی ہے۔ لہذا اگر نیت اللہ کی خاطر ہو کہ اس نے عمل اللہ کے لیے انجام دیا ہے اور اس عمل کو ان طریقوں سے انجام دے رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ہدایت کیے ہیں، یہ عمل عمل حسنہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی اساس پر چنتا ہے، اپنی آسانی دیکھتا ہے یا اپنا میلان اور اپنی رغبت دیکھتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اپنے تئیں اسے انجام دے دیتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ بھی قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے نمونے بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ مثلا یہ کہا جائے کہ اس طرح سے آپ کی نماز یا اس طرح سے آپ کا روزہ درست نہیں ہے، وہ کہتا نہیں نہیں اللہ قبول کر لے گا، یہ اللہ اور میرا معاملہ، اللہ قبول کر لے گا، جبکہ آیات اس کے بارے میں ہے کہ نہیں اس طرح سے انجام دو، فقہی احکام اس کے بارے میں، لیکن کہتا نہیں نہیں بس اللہ قبول کر لے گا۔ تو یہ طریقہ کار انسان کے لیے انتہائی خطرے کا، ایک انسان کو خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ وہ سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ اس راہ کے اوپر نہیں ہے کہ جو راہ اللہ کو قبول تھی۔ اس لیے بہت سارے افراد اپنی زندگی میں سخت زحمت اور مشقت اٹھاتے ہیں لیکن ان کی یہ زحمت اور مشقت رائے گاں ہے، عبث ہے، یا حبط کر لی جائے گی۔ قرآن میں ایک موضوع حبط بھی ہے، اسی کے ضمن میں موضوع آ جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ ساری عمر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بہترین عمل انجام دیا ہے جبکہ عمل ان کا بہترین نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر، ظاہری اعمال کی اساس کی پر اگر حکم لگانا چاہیں تو ریاکار بھی بخشا ہوا ہے، منافق بھی بخشا ہوا ہے۔ اگر ہم ظاہری اعمال کی اساس کی پر حکم لگانا شروع کر دیں اور اس کی نیت اور اس کی کوشش ہمارے پیش نظر نہ ہو تو پھر تو خلوص، ایمان، یقین، یہ سارے کے سارے معنوی اور باطنی جو مراتب ہیں وہ بے فائدہ بے نتیجہ کہلائیں گے۔ لہذا قرآن کریم باطن کی اساس کے اوپر ظاہر سے عمل کو چاہتا ہے، نہ کہ فقط ظاہری طور پہ ایک عمل کسی بھی طرح سے انجام پا جائے، یعنی عبادات کی دنیا میں اگر پوری اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یہ ایک ضابطہ اختیار کر لے تو انسان کا رشد جو ہے وہ تیزی سے، اور نشوونما انسان کی تیزی سے ہو سکے گی۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے پہلی آیت کو پیش کیا جاتا ہے اور اس ضمن میں کچھ روایات ہیں اور کچھ اس میں تحلیلی گفتگو ذکر کی جائے گی تاکہ یہ بات ہمارے لیے آشکار ہو کہ عمل کی اساس وہ معرفت اور خلوص نیت ہے۔ معرفت کے ذریعے سے وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ جس کی طرف رہنمائی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور نیت خالص انسان کو ریاکاری اور شرک اصغر اور اکبر اور دیگر کثافتوں سے اور دیگر طرح کی آلودگی سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ लिहाजा आमाल का दार मदार नियात के ऊपर है। शिया सुन्नी कुतुब में जुमला ये वारिद हुआ है। और इसी तरीके से इंशाल्लाह भी आपके सामने बाज़ अहादीस मुबारका पढ़ी जाएंगी कि इंसान के अमल की एक बुनियाद मारिफत है, इल्म है। इल्म के बग़ैर अगर एक इंसान अमल अंजाम देता रहे तो क्या पता कि वो अपने अमल की अंजामदही से दूर पे दूर होता चला जा रहा है, बजाय इसके कि करीब हो मज़ीद दूर होता चला जा रहा है। इसलिए हर अमल को अंजाम देने से पहले उस अमल की अंजामदही का तरीक़ेकार सीखना चाहिए। नंबर दो, अमल की अंजामदही पे तवज्जो अल्लाह की तरफ रखनी चाहिए। अगरचे अतराफ़ का माहौल है, लोग हैं, अफराद हैं, बदनी तकाजे हैं, ये सारे इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हत्ता कि बदनी तकाजे जैसे नींद है, भूख है, इंसान के वजूद में इस्तेराब है, परेशानी है, कोई बहुत खुशी है, कोई शोखी का एक अंसर उसके वजूद में शामिल है, कोई जल्दबाजी का एक अंसर शामिल है, कई चीज़ें इंसान को खींच रही हैं। लिहाजा अमाल को इंसान खालिस नीयत के साथ अंजाम दे। नीयत खालिस की जब बात आती है तो अपने कल्बी और नफसानी ताल्लुकात जो उस्तवार हैं इंसान के वजूद के अंदर, ज़ाहरी तौर पे तो वो मसलन मुसल्ला के ऊपर आ गया ना, जाए नमाज पर आ गया, बदन को तो घसीट के ले आया, लेकिन वो जो बदन के मावरा नफ्स है इंसान का, उस नफ्स के साथ जो ताल्लुकात और मुख्तलिफ तरह के रवाबित ईजाद हैं उसको भी तोड़ना लाजिम है। मसलन अपने आल औलाद के साथ, अपने घराने के साथ, अपने पेशे के साथ कोई झगड़ा हुआ है या किसी तरफ उसने जाना है, मेलान है, कई चीज़ों के साथ वो झगड़ा हुआ है। नियत खालिस यानी इन सब ताल्लुकात से अपनी तवज्जो और अपने अभी इस राबते को ज़ईफ़ करे, तवज्जो को हटाए और पूरी की पूरी तवज्जो मरकूज़ कर दे अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ। ये नियत खालिसा की तरफ लेके जाता है। ये बेदून रियाजत मुमकिन नहीं है। अगर कोई शख्स ये चाहे कि इस हवाले से मैं आयात रिवायात पढ़ के फ़ौरन ये हासिल कर लूँ, तो ये फ़ौरन हासिल किसी के लिए भी नहीं होने वाला, ना किसी मुफस्सिर और मुहद्दिस और फ़कीह और मर्ज़ तकलीद के लिए, और ना किसी हुज्जतुल इस्लाम व किसी और मोमिन के लिए, यानी अहले इल्म और अहले इबादत के लिए अमल मुश्किल है कि नियत खालिसा को फ़ौरन हासिल करे। तो फिर तो वो अफराद जो इस राह के नहीं हैं उनके लिए और सख्त होगा, यहाँ सवाल पैदा होगा, क्योंकि ये मौजू हमारा नहीं है कि हम आयात रिवायात के हमरा इसको पढ़ें। इसलिए सिर्फ इशारे आपकी खिदमत में किए जाते हैं जो बुजुर्गान ने जिक्र किया है। रियाजत करें, शरी रियाजत कोशिश करें, यानी हम कोशिश ही कर सकते हैं। इस कोशिश को छोटा ना समझें, इस कोशिश को हकीर ना जानें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, बस पा लूँ मैं हर सूरत में पा लूँ, नहीं, अपनी कोशिश को जारी रखें। अता अल्लाह ने करना है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ना नतीजा हमारे हाथ में है और ना अता हमारे हाथ में है। जो अल्लाह ने हमारे इख्तियार में दिया वो सिर्फ़ एक चीज़ है, और वो क्या है? तलब, कोशिश। जितनी ज़्यादा कोशिश होगी, जितनी बढ़कर तलब होगी, उतना पाता चला जाएगा इंसान, क्योंकि देना अल्लाह की ज़ात ने है। इल्म हो या कोई और कमाल इंसानी हो, तवक्कुल हो, सब्र हो, शुक्र हो, जज्बे इबादत हो, जो कुछ भी इंसान को अता होना है वो अल्लाह की तरफ से है। और इसी तरीके से इंसान कोशिश करेगा तो कोशिश से एक चीज़ वजूद में आती है, नशोनुमा पाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर पानी का कतरा, क्योंकि हमारी कोशिश पानी के कतरे से हल्की नहीं हो सकती, अगर पानी का कतरा सख्त पत्थर पे, क्योंकि पत्थर पे नक्श छोड़ना और नक्श बनाना सबसे सख्त है, नरम जिस्म पे आसान है, इसलिए सख्त तरीन पत्थर या सख्त तरीन जिस्म के ऊपर अगर आप कोई नक्श बनाना चाहते हैं, कोई असर छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कोई बड़ी ठोस और महकम या लोहे की कोई चीज़ ला के ज़ोर से, ताकत से उसे मारना होगा, तब वो सख्त जिस्म के ऊपर एक असर छोड़ सकेगी। अब पानी हल्की सी चीज़ है जिसकी कोई ना हैसियत है, ना कीमत है, ना वज़न कोई ख़ास है, और एक हवा के झोंके से उड़ जाता है, इसलिए बहुत इतना नरम है कि हाथों में दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो फैल जाता है, इस कदर नरम है, और इस कदर हल्का है कि हल्की सी हवा के झोंके से उसका रुख मुड़ने लग जाता है। लेकिन अगर यही हल्का सा जिस्म तकरार इख्तियार कर ले, रियाजत इख्तियार कर ले, और अपने इस हकीर वजूद के साथ हकीर सी जर्ब लगाता रहे तो पत्थर के अंदर सुराख कर देता है। इससे हमें ये बात जाननी चाहिए कि अपने तकरारी अमल को जो अहद और अज़्म करके, बेशक कलील क्यों ना हो, वो कलील अमल जो दायमी है उस कसीर से बेहतर है जो मुस्तमरारी नहीं है। नजबुलागा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान और दीगर अहादीस में भी वारिद हुआ है कि वो कलील अमल जो दवाम रखता है, हमेशगी रखता है, मुसलसल आप अंजाम देते हैं, उस कसीर से बेहतर है जो कभी कभी अंजाम दिया जाता है, क्योंकि ये रियाजत की सूरत में मलका बनता है, इंसान के अंदर एक क़ुव्वत के हुसूल का बायस बन जाता है। पानी की मिसाल के ऊपर दिक्कत करें, क्योंकि इंसान फौरन नतीजा लेना चाहता है, फौरन नतीजा नहीं, यानी एक ही ज़र्ब लगा के पत्थर को तोड़ना चाहता है, तो ये काम नहीं होने वाला। होने वाला जो काम है वो यही है, अमल अंजाम देते रहें, लेकिन जैसा कम अमल है ऐब नहीं है, हल्का अमल है ऐब नहीं है, यानी आसान अमल है, हल्के से मुराद आसान, ऐब नहीं है, इस्तिमरार उसमें होना चाहिए। इस्तिमरार की कोशिश करें, उसको किसी सूरत में भी टूटने ना दें। वो इंसान में एक रियाजत की सूरत में अगर हम अमल अंजाम दें, तो ये नीयत भी इसी तरह है, कोशिश करें अल्लाह की तरफ नीयत हो जाए, कोशिश करें अल्लाह के लिए अंजाम दें, कोशिश करें अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो रहे। अब वो खालिस 100% तो नहीं रहेगी, अच्छा 90% नहीं, 80, 70, 60, अब 50 से भी नीचे आ जाती है, 30%, 40, 30, 20, यहाँ तक कि अगर 2-1% भी होती है उसे भी ना छोड़े, तर करें। मसलन अगर हमने किसी भाई की मदद करनी है, घर का काम काज अंजाम देना है, कस्ब कार के लिए जाना है, अपने किचन के लिए कोई चीज़ें ख़रीदनी हैं, तब भी अल्लाह के लिए इंसान नियत करें कि अल्लाह मैं तेरे लिए अंजाम दे रहा हूँ, ये इबादत बन जाएगा, कार खैर बन जाएगा, उसके नफ्स के ऊपर एक असर मुसबत डालेगा। अब ऐसे मौरद में अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो कर ले और हर रोज़ करे, कैसे हो सकता है कि अल्लाह के औलिया में से वो करार ना दे पाए, अल्लाह के महबूब बंदों में से करार ना पाए, क्योंकि एक दफ़ा तो वाजिब इबादत है जिसमें अल्लाह की तरफ तवज्जो किए बग़ैर इबादत अंजाम दी तो इबादत ही नहीं है, क़ुर्बतन इलल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरे से इस अमल के ज़रिए से करीब होना चाह रहा हूँ। अगर करीब होने की नीयत ना हो तो इंसान के वजूद में वो इबादत इंसान से अंजाम नहीं पाएगी। लेकिन एक मरतबा अल्लाह सुबहान तआला ने क़ुर्बतन इलल्लाह ज़रूरी करार नहीं दिया, अमल है, मुबाह भी है, मुबाह हो सकता है, अच्छा है, यानी तर्क भी कर सकते हैं, अंजाम भी दे सकते हैं, हर दो सूरतें इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए अंजाम देने लग जाए, ये मुबाह के दायरे से निकल के इबादत बन जाएगा। इसलिए अमल सालेह की हमें नौयत को जानना चाहिए, कैफियत को जानना चाहिए, ताकि हमें ये वाला टॉपिक समझ आए कि हर कोई जैसे तैसे भी अमल अंजाम दे दे तो लाजमी नहीं है कि वो काबिले तारीफ़ बन जाए, काबिले मदह करार पाए, हतमन उसको समरा और हतमन उसका अजर रखा जाएगा, नहीं, लाजिम नहीं है। लोग यही समझते हैं कि ज़ाहरी तौर पर हम नक्काली करें, ज़ाहरी तौर पे मुशाबहत की सूरत इख्तियार करें अमल में, तो जो इसको मिला है अजर और सवाब ये भी इसको मिल जाएगा। कुरान करीम इस हवाले से वाज़े तौर पे शिद्दत के साथ इस बात का इनकार करता है कि तुम लोगों की कोशिशें जुदा जुदा हैं। मुमकिन है कि ज़ाहरी अमल एक जैसा हो कि वल्लैल इज़ा यख्शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा इन सायकुम नशत्ता। कसम अल्लाह ताला ने 3 मरतबा खाई और इस कसम को वल्लैल इज़ा यख्शा, रात की कसम खाई जब वो छा जाती है, दिन की कसम खाई जब वो निकल आता है, और मुज़क्कर मोनस की खिलकत की कसम खाई, 3 कस्में खा के अल्लाह ताला ये बात बयान फरमा रहा है, इन सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें जुदा जुदा हैं, वो परागंदा हैं, सबकी यकसा कोशिश नहीं है। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि तुम लोगों की कोशिशें एक जैसी हैं और सबकी कोशिशें बेहतर हैं। तफसीर कुम्मी में इस हवाले से तफसीर भी वारिद हुई है, तफसीर कुम्मी में ये नुक्ता पेश किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि कदीमी तरीन हमारे यहाँ तफसीर है और उसके जो मुसन्निफ़ हैं अली बिन इब्राहिम कुम्मी, बहुत अजीम शख्सियत गुजरी हैं कि कुम मुकद्दसा में उनका मज़ार है, शेख मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने 40 या 50 या मुमकिन है कि इससे ऊपर हो। बहरहाल 40% तो हतमन है। 40% अलकाफ़ी की ज़खीम किताब अली बिन इब्राहिम कुम्मी के तवस्सुल से हम तक पहुंची है। बहुत बड़े मुहद्दिस शख्सियत थी ये। इन्होंने एक तफसीर लिखी जो तफसीर कुम्मी के नाम से जानी जाती है, चूँकि अली बिन इब्राहिम कुम्मी के जो वालिद थे दोनों दोनों अरब हैं, कूफ़ी हैं। इनके जो वालिद ग्रामी थे इब्राहिम बिन हाशिम, वो ज़ाहिरन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, वाइल्ला इमाम तकी अलैहिस्सलाम के सहाबी ज़रूर हैं, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या और इसी तरह से इमाम तकी अलैहिस्सलाम, मुमकिन है इमाम नकी अलैहिस्सलाम के भी सहाबी रहे हों। और पहली शख्सियत हैं जिन्होंने आइमा अथार अलैहिस्सलाम की अहादीस कूफा से इस जगह कुम मुंतकिल की। बड़ा एक नाम है इनका। तो तफसीर कुम्मी अली बिन इब्राहिम कुम्मी जो मोहम्मद बिन याकूब कलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद और शेख हैं और अलकाफ़ी का बड़ा हिस्सा इन्हीं के ज़रिए से आया है, ये हस्ती इन्होंने एक तफसीर लिखी। तफसीर लिखना यकीनी है। हाँ, ये अब एक सवाल है कि जो तफसीर उन्होंने लिखी वही है जो अभी हमारे हाथों में है या वो नहीं है। और फिर जो तफसीर लिखी उसमें दो तरह का उसलूब है। एक दफ़ा तो आइमा अलैहिस्सलाम का नाम तहरीर फरमाते हैं कि मसलन फ़लाँ रावी ने बताया और फ़लाँ इमाम से है, मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से यह रवायत है। लेकिन एक दफ़ा रवायत में इमाम का तस्करा नहीं है, ना सनद का तस्करा ना इमाम का तस्करा है। तो बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं, चूँकि उस दौर में किताबें लिखने का अंदाज़ ही ये था कि आइमा अलैहिस्सलाम के कलाम के अलावा कुछ नहीं लिखते थे। ये शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक तकरीबन यही उसलूब रहा कि अपना बयान 5% होगा, बकिया 95% सारा का सारा कलाम वो इमाम मासूम का दीगर कुतुब से जम आवरी की जाती थी। तो बाज़ उलमा कहले अली बिन इब्राहिम कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह उनकी पूरी तफसीर आइमा अलैहिस्सलाम से ही है, और उन्होंने बाज़ में सनदों को ज़िक्र किया और बाज़ में जहाँ नहीं कुछ ज़िक्र किया वो भी रवायत ही है। तो बहरहाल अपनी जगह ये नुक्ता इसलिए ज़िक्र किया कि यह रवायत की तफसीर जो आपकी खिदमत में ज़िक्र की जा रही है इसमें दोनों एहतमाल हो सकते हैं। इमाम मासूम की तरफ नस्बत भी उन उलमा के मुताबिक हो सकती है जो इस बात के कायल हैं, और अगर कहें कि नहीं इमाम की रवायत चूँकि मंसूब नहीं है, वहाँ पर तस्करा नहीं है हरावी या सनद या इमाम मासूम का, तो उनकी तरफ नस्बत भी नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद मतलब अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बहुत आश्कार माना है इन नसायकुम लशत्ता कि तुम लोगों की कोशिशें मुख्तलिफ हैं। इसलिए हर कोशिश करने वाला उसको खैर अपने लिए ना समझे, हर कोशिश करने वाला उसे अच्छा ख्याल ना करे, हर कोशिश करने वाला कामयाबी से अपने आप को हमकिनार ना समझे। इसलिए अब मसलन ग़ज़वा खंदक में बहुत सारों ने ज़रबें लगाईं, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़र्ब लगाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल रिवायत है ला ज़र्बतु अलीयिन अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन, के अली अलैहिस्सलाम की जो ये एक ज़र्ब है, ये एक ज़र्ब वो सक़लैन की दोनों जहान के में जो आबाद हैं अफराद उनकी इबादत से अफजल है। अब इसके अंदर असल सबब क्या है? असल सबब यही दो नुक्ते हैं कि जो मारिफत की औज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रखते हैं और जो नीयत का खालिस्पन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रखते हैं वो किसी और की तरफ नहीं पाया जाता। इस दो की असास के ऊपर असल में अमल खड़ा होता है। मारिफत यानी कैसे अंजाम देना है, किसके लिए अंजाम दिया जा रहा है, क्या इसके अंदर इंसानियत के लिए अल्लाह ने करार दिया है। नंबर दो, अपने ताल्लुकात और अलाइक को तोड़े, मुख्तलिफ ताल्लुकात और रवाबित इंसानी नफ्स के आबाद हैं, अपने वजूद से है, अपने घराने से, अपने बीवी बच्चों से, अपने आसपास के अतराफ से गहरा ताल्लुक इंसान का जुड़ा हुआ है, ये खींचते हैं अंदर ही अंदर। ज़ाहरी तौर पे जिसम मुसल्ला पे ला के नमाज के लिए जा नमाज के ऊपर खड़ा होके रुख किबले की तरफ कर चुका है, लेकिन अंदर वो जो ताल्लुकात हैं खींच के अपनी तरफ उसकी तवज्जो मबजूल की हुई है। यानी जिसम का मुंह इस तरफ है, जैसे कि बाज़ तस्वीरें ऐसी बनाई हुई हैं समझाने के लिए, जिसम का मुंह इस तरफ है लेकिन अंदर का मुंह दूसरी तरफ है, वो किबला रुख नहीं है। असल में नफ्स ने किबला रुख होना है, अल्लाह की तरफ नफ्स का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए अहादीस मुबारका इस हवाले से बहुत वाज़ हैं, आयात करीमा बहुत वाज़ हैं कि तुम कोई भी किसी भी जगह देखो अल्लाह है। कुरान की आयात हैं कि जहाँ पे भी तुम मुंह मोड़ोगे वहाँ पे तुम अल्लाह सुबहान व तआला को पाओगे। तो क्या मतलब, यानी किसी भी काम को अंजाम देना चाहते हो उस जहे से अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम कर सकते हो। इस आयत करीमा इन नसायकुम लशत्ता तफसीर कुम्मी में वारिद हुआ है कि फरमाते हैं मिनकुम मन यसअ फिल खैर, तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो खैर में कोशिश करते हैं कि खैर को ले लें, और मिनकुम मन यसअ फिल शर, और तुम में से बाज़ हैं कि जो शर के लिए कोशिशें करते हैं। बस इन नसायकुम लशत्ता, तुम लोगों की कोशिशें यकसा नहीं हैं, कोशिशें जुदा जुदा हैं। ये जब हम मतलब जान गए तो हमें यहाँ से अमले सालेह के तमाम इन उमूर का पता लग गया कि अमले सालेह किस पर खड़ा होता है। कुरान करीम ने भी बयान किया कि असल जड़ कहाँ पे होती है और कैसे ये नशोनुमा पाता है। जैसा कि कुरान ने इस अमल को सूरह अनआम आयत नंबर 125 में ज़िक्र भी किया है, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, कि अल्लाह ताला जब इरादा करता है कि किसी को हिदायत दे, यशराह सदरहू लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता है, शरह सदर आ जाती है, यानी वो इस्लाम की बातें सुनने, हिदायत से हमकिनार होने के लिए शरह सदर उसके अंदर वजूद में आ जाती है। वमन युरिद अन युदिल्लहू, और अल्लाह जब इरादा करता है किसी को गुमराह करे, यजअल सदरहू दय्यकन हरजन, तो उसके दिल तंग कर देता है इन हिदायत वाली बातों से, दर्स वगैरह से, उसका दिल जो है वो घबराता है और वो उससे भागने की कोशिश करता है। अब वसत कल्बी जो है ये इसी से है कि वो अपने वजूद के अंदर हकायक के हकीकी हकायक से ताल्लुक़ कायम करना चाहता है। अच्छा, इसी तरह कुरान करीम ने ये भी ज़िक्र किया है कि ये जो अमल है वो अमल तौलानी तौर पे ऊपर की तरफ, अमल सालेह जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। यसअदुल कलिमु तय्यिब वल अमलु सालेह यरफ़ाउहू, कि अल्लाह ताला इस अमल सालेह को और अमल तय्यिब को बढ़ाता है। बस अमल तय्यिब हमारे पास कौन सा है, अमल तय्यिब इसी से ताबीर है कि मारिफत और नियत खालिस की असास के ऊपर अंजाम दिया जाए। अपने मौजू की तरफ आते हैं और कुरान की दो आयात को मुतालिया करते हैं जो ये बात बताती है कि बदगुमानी करने वाले बदगुमानी जब करते हैं तो मुख्तलिफ आमाल को अपने अच्छा समझने लग जाते हैं। पहली इसमें हमारे पास आयत है सूरह आराफ आयत नंबर 30। सूरह आराफ आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला होता है, फरीकन हदा, एक ग्रोह है जो हिदायत पा गया, व फरीकन हक अलैहिमुद्दलाल, और इनमें से एक ग्रोह ऐसा है कि जिसके ऊपर गुमराही जो है वो मोहकम तौर पे उनका अंजाम बन के उनके ऊपर आ गई। इन्नहुमुत्तखदु अश्शयातीन अवलिया मिन दूनिल्लाह, ये जो गुमराह हुए थे क्यों ये इनके ऊपर गुमराही छा गई, क्यों मुस्तहिक करार पाए गुमराही के, वजह ये थी कि इन्होंने शयातीन को अपना अवलिया इख्तियार कर लिया, अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के शयातीन को अपना अवलिया बना लिया। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, और फिर ये गुमान किया करते थे कि हम हिदायत याफ्ता हैं, यानी एक तरफ शयातीन से ताल्लुक़ कायम किया और शयातीन से ताल्लुक़ कायम करके उन्होंने नेक अमाल शुरू कर दिए और नेक अमाल अंजाम देते हुए समझते थे कि हम हिदायत याफ्ता हैं। इसके ऊपर थोड़ी हमें दिक्कत की ज़रूरत है इस आयत के ऊपर, क्योंकि एक तरफ है कि ये अवलिया शयातीन को बना रहे हैं, फिर हिदायत याफ्ता कैसे गुमान कर रहे हैं, क्योंकि गुमान का मतलब ये होता है कि जब इंसान उसे नज़रिए के तौर पर या एतिकाद के तौर पर ले रहा है तो वो उसे सही समझ रहा है। बाहर से एक शख्स आके हमें बताता है कि नहीं, आप जो समझ रहे हैं, आप जो एतिकाद किए हुए हैं, ये खिलाफ हकीकत है। इंसान जब उसकी बात सुनता है और फिर मुआजना करता है, फिर इसका इकरार करता है। तो यहाँ पे थोड़ी टकराव वाली बात है, इसलिए इधर तफसीर को हमें दिक्कत से लेना होगा। एक तरफ शयातीन को औलिया करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हिदायत याफ्ता भी समझ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि जो शयातीन को औलिया करार देगा वो यकीनन व यकीनन ख़ुद शयातीन में से इकरार पाएगा, और शैतनत का तकाजा यह है कि वो तो हिदायत की बजाय गुमराही को लेता है, हक की बजाय बातिल को लेता है। लिहाजा यहाँ पे अगर ये बात होती कि वो बातिल को कबूल करते थे वो गुमराह रास्तों को पसंद करते थे। तो ये हमें ज़ाहरी जो इबारतें आयत करीमा और दीगर नसूस हमारे पास हैं उसे साजगार दिखाई देता, लेकिन ये मतलब हमें थोड़ा सा ताजुब आवर दिखाई देगा कि एक तरफ शयातीन को वो अवलिया करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हिदायत याफ्ता। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान अपने आप को हिदायत याफ्ता समझे और दूसरी तरफ उसने शयातीन को अपना अवलिया, सरपरस्त, वली, दोस्त, महबूब बनाया हुआ है, हो सकता है ऐसा। तो इस हवाले से इलल शराय में इमाम मासूम की एक रवायत पाई जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मासूम से ही है कि क्योंकि रवायत ये तोलानी है और हम अपने मकसूद हिस्सा पढ़ेंगे, ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है जो कि अबू इसहाक़ लईसी ने नकल की है। इसमें इमाम सादिक़ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी आयत को पढ़ के कि फरीकन हदा व फरीकन हक अलैहिमुद्दलाला इन्नहुमुत्तखदु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह। तो इमाम फरमाते हैं यहाँ पे शयातीन को औलिया बनाने से मुराद है आइम्मतल जौरे दून अल आइम्मत हक, यानी उन्होंने अपने इमाम जो बनाया, यानी जिसकी पैरवी करते थे, जिसकी इत्तबा करते थे, जिसके पीछे चलना चाहते थे, जिससे पसंद जिसे किया करते थे, बतौर हाकिम पसंद करते थे, बतौर अपने लिए उसवे कामिल समझते थे, उसके पीछे चलना, उसके अंदाज इख्तियार करना आइमाए जोहर को उन्होंने करार दिया हुआ था। और दूसरी तरफ से अमाल भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, खुम्स भी दे रहे हैं, हज व ज़ियारत भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कलबी तौर पे उन्होंने इमाम किसको बनाया हुआ है, आइम्मतुल जौर को इमाम बनाया हुआ है। ये है इस आयत की तफसीर कि एक तरफ इत्तखदु शयातीन औलिया, अपना औलिया बना लिया शयातीन को, और दूसरी तरफ ज़ाहरी हिदायत वाले काम भी कर रहे हैं। लिहाजा ये वाला मतलब इंशाल्लाह आइंदा के दुरूस में भी आएगा कि जिसमें इसको हम उस आयत को पढ़ लेते हैं इसी मतलब को समझने के लिए, क्योंकि हमें आइमाए जौर और आइमाए हुदा में ज़िंदगी के ऊपर जो असरअंदाज ये अकीदा होता है इस जहत से तबलीगात कम है, हमारे माशरे में बहुत कम है इस जहत से। इतिकादी और इकरारी ज़ुबान जो है और फ़ज़ाइल की दुनिया इस जहत से है, चूँकि फ़ज़ाइल की दुनिया में तो अमली हमारी ज़िंदगी का पहलू वो थोड़ा सा मधम हो जाता है, मुबहम हो जाता है, क्योंकि फ़ज़ाइल के बिना पे तो बिल्कुल बहुत आला सतह की हस्तियाँ हमारे सामने उजागर होती हैं। लिहाजा हमारे लिए तो वो उसमें कामिल थी, यकीनन उनका वो पहलू भी दिखाई देना चाहिए, दिखाना चाहिए, बयान करना चाहिए कि जिसमें हमने उनकी पैरवी करनी है, जिसमें हमने उनके पीछे चलना है, जिसमें हमने इताअत करनी है, इत्तबा करनी है। अब इसका नतीजा ये निकला कि इत्तबा के बाब में इमाम जुदा हो गए और इकरार की दुनिया में इमाम जुदा हो गए। लिहाजा हमने मुलाहिज़ा आइमे अथार अलैहिस्सलाम की तालीमात में इस तरह से नहीं है कि जिस इमाम की इत्तबा करनी है उसके फ़ज़ाइल बयान करके उसको अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल जुदा तौर पे एक ख़्याली दुनिया में पहुंचा दिया, और फिर वो ख़्याली दुनिया में अब मरसिए भी पढ़ता है, कसीदे भी कहता है, और सिर्फ मौजज़ात और करामात पे उसने निगाह अपनी पूरी मरकूज़ की हुई है। तो इस दायरे में जो तसव्वुर इमामत का या खिलाफत का या हाकमियत का, इत्तबा का, वो हमारे सामने आएगा, वो अमली ज़िंदगी में हमें कोई ख़ास नतीजा नहीं देगा, क्योंकि फ़ज़ाइल में हमने उन्हें फ़रिश्तों से अफजल इस्मत के दर्जे के ऊपर करार दिया, विलायत तकमीनी उनके लिए साबित कर दी हमने, और मोजज़ात और करामात का पहलू बस उठा लिया। ये चीज़ें भी उनके लिए हक हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन जामे तौर पर हम इन हस्तियों को ज़िक्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कदर अजीम हस्तियों को ज़मीन के ऊपर हम लोगों की हिदायत के लिए करार दिया था। अगर हम उनसे इत्तबा और इताअत के पहलू को फरामोश कर दें और उन पहलुओं को ले लें जिन पहलुओं में हम उनके ना बराबर हो सकते हैं ना उनके पीछे चल सकते हैं, वो अर्श के ऊपर और हम लोग फर्श की सतह पर बैठे हुए हैं, कैसे ये मुकायसा हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जब इताअत के बाब में आएंगे तो इताअत के बाब में हम करार देंगे कि ये इमाम हैं, ये आगे चलने वाले हैं, ये कदम उठाने वाले हैं, हमने इनके पीछे पीछे चलना है, ये हो सकता है। लेकिन इस पहलू को अगर गायब कर देंगे तो फिर यही होगा कि तखयलाती दुनिया फिर आबाद हो जाएगी। इसलिए मरसिया, नोहें, नातें, कसीदे, वो सारे जज्बात और ज़हनी ख्यालात के तनाजुर में लिखे हुए होंगे। जबकि ज़रूरी क्या है, यानी उसका फिर नतीजा क्या निकलता है, बातनी तौर पे इमाम वो जुदा हो गया जिसके पीछे हमारा बातिन चल रहा है। जो बातिन ने मियारात लिए हुए हैं वो किसी और इमाम के लिए हुए हैं। वो मसलन इमाम गरबी माशरा बन गया, वो इमाम बिलफर्ज आज की वेस्टर्न मसलन सोसाइटी बन गई, वो इमाम मुमकिन है साइंस बन गया, जो अंदरूनी मियारात हमें दे रहा है, अंदरूनी तौर पे हमें मीज़ान दे रहा है कि इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। और वो जो हकीकी इमाम था वो फ़कत इकरार की असास पर और जज्बात के ज़रिए इजहार उनसे मोहब्बत के इजहार तक रह गया, यानी इकरार और इजहार इस दायरे में बंद होकर रह गया। लिहाजा यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इधर जिनका तस्करा किया जा रहा है वो कौन से अफराद हैं, इत्तखादुश शयातीन अउलियाअहू, यानी जिन्होंने आइमाए जोर को इख्तियार कर लिया, और वो यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो यही गुमान करते थे कि हम हिदायत याफ्ता हो गए। नहीं, जब तक बातिन के ज़रिए से इमाम हुदा से राबता कायम नहीं करेंगे और इताअत का रिश्ता आइमाए हुदा अलैहिस्सलाम से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम हिदायत की राह के ऊपर नहीं चल सकेंगे। और ये मंजर आज के दौर में हमें नज़र भी आता है। और इधर वजीफ़ा अगरचे दीनदार तबके का, बिलखसूस उलमा का, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बन जाता है। वैसे तो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर तमाम की तमाम उम्मत पर वाजिब है, लेकिन उलमा का वजीफ़ा शदीद तर है, चूँकि वो मारूफ को भी जानते हैं, मुनकरात को भी जानते हैं। अब अगर सुस्ती करके अपने लिए ख़ुद बहाने ईजाद करके किसी जगह एक आलिम बैठा रहे तो रोज़े क़्यामत उसके ये बहाने उसे छुड़ा नहीं सकेंगे, कबूल नहीं है ये उज़्र। लाजिम है कि अमर बिल मारूफ व नहीं निल मुनकर करें। चंद सालों पुरानी बात है, अरबाइन के अय्याम में सआदत अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई बंदे हकीक को कि रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हाजिर हो सके। वहाँ पे बहुत सारे मंजर देखने को मिलते हैं, पूरी दुनिया से एक वसी हुजूम आया होता है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ रफ्ता रफ्ता ये हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस ज़ाहरी राह के अलावा हकीकी राह के ऊपर भी उसी तरह गामजन हो जाएगा कि जैसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे, कि जिसमें दुश्मन शनासी भी हो और इमाम की मार्फत शनासी भी हो। बहरहाल वहाँ पे बैनुल हरमैन में एक पाकिस्तानी दस्ता आया हुआ था, जवान ज़्यादा थे। पाकिस्तानियों की ये खूबी अल्हम्दुलिल्लाह होती है कि उनके जवान दीन की तरफ ज़्यादा रागिब होते हैं। अलबत्त वो जो दीन इख्तियार करते हैं वो माशरती दीन है, यानी वो हकीकी दीन तारुफ कराने वाले अफराद कम हैं, और उनके लिए मुश्किल भी अगरचे माशरे में ज़्यादा होती हैं, लेकिन वजीफ़ा यही बनता है कि हकीकी दीन को मुतारफ़ कराएँ। खुलासा कलाम, वहाँ पे बड़ा एक दस्ता था कि वो मसलन 40-50 से तो ऊपर थे। तो अय्याम से कुछ दिन पहले, यानी ये जो अरबाइन का दिन था, 3-4 दिन पहले की बात है, क्योंकि रोज़े अरबाइन तो उधर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, और 4-5 साल पहले कदरे चंद दिन अरबाइन के आने से पहले कुछ ना कुछ किसी हद तक खलवत हुआ करती थी। आजकल तो वो भी खलवत चली गई और 10 दिन ये किस्म के पैक इंसान को मिलते हैं। उन दिनों में 40-50 नफर या इससे कुछ ऊपर नीचे होंगे, दस्ता था, जवान थे और नमाज से भी आशना थे, यानी वो नहीं थे आज़ादार, जो नमाजें उनके यहाँ आज़ादारी की कज़ा नहीं है, नमाज की कज़ा, इस तरह का उन्होंने एक बातिल फ़लसफ़ा और शैतानी अपने जहन के अंदर गुमराही का नज़रिया इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि हकीकी माना में यह गुमराही है कि कोई कहे कि नमाज की कज़ा है इसलिए कज़ा होने दो, आज़ादारी की कज़ा नहीं है इस वजह से इसको इख्तियार करो। असलन दोनों में टकराव नहीं है, आज़ादारी तो है ही नमाज को बचाने के लिए, वो आज़ादारी जो दिफा ना नमाज का कर सके वो कैसी आज़ादारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नमाज की खातिर शहीद हुए, दीन की खातिर शहीद हुए, दीन को बाकी रखना चाहते थे। ये इसने कैसा फ़लसफ़ा घड़ लिया कि आज़ादारी की कज़ा नहीं इसलिए अंजाम देते रहो, बल्कि आज़ादारी तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, वो तो किसी ज़मान और मकान में महदूद नहीं है। आधी रात को उठ के करें आप मग़रिब के टाइम करें, मग़रिब के बाद करें, फजर से पहले करें, फजर के बाद करें, कोई टाइम उसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस टाइम नहीं रखा, नमाज के लिए मुख्तस टाइम है। और फिर अज़ादारी, उसकी ज़िम्मेदारी अज़ादारी की, वो दीन की हिफाजत व दीन की बका है। इसलिए वो जो अज़ादारी है, जिसने पहरादारी करनी है दीन की, वही दीन को, उस नाम से दीन को अगर ख़त्म करना शुरू कर दिया जाए, जो नमाज की मुहाफ़िज थी, वो मुहाफ़िज़ ही नमाज को अगर ख़त्म करना शुरू कर दें, तो हम इधर कहेंगे कि ये फिर बहरूपिए में आ गए हैं, यह आज़ादारी के रूप में, जैसे गार्ड के रूप में दहशतगर्द आ जाए, तो ये भी गार्ड के रूप में दहशतगर्द लोग आ गए और नमाज को नुकसान पहुंचाने लग गए। लेकिन जिन मोमिनीन का तस्करा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वो मोमिनीन हैं कि जो नमाज से आशना थे, बैनुल हरमैन नमाज का क़िबला रुख हो के शरफ़ हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ताजुबावर चीज़ ये थी कि सब ने लब्बैक या हुसैन की पट्टियाँ पहनी हुई थी और माथों के ऊपर पट्टियाँ थीं और सजदा कर रहे हैं, लेकिन हाइल है कपड़ा, और मकतब अहले बैत अलैहिम सलाम में रवायात अहले बैत अलैहिम सलाम के मुताबिक कपड़े के ऊपर सजदा नहीं होता। अब ये एक रुख है, वज़ू उन्होंने किया, ज़हमत इतनी उठाई, उस रश में बैनुल हरमैन में उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, किबला रुख हुए, और एक अजीम तरीन मकाम पे कि जहाँ पे शहदाए करबला का खून गिरा है, उस सरजमीन पे उन्हें सआदत नमाज हासिल हो रही है कि यकीनन व यकीनन इन्हीं ज़मीन के किसी न किसी हिस्से में शब रोज़ आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहदाए करबला के साथ नमाज ज़ुहर असर अदा की थी और बकिया दिनों में नमाजें अदा की थी, लिहाजा उनकी इत्तबा में उन्होंने उस सरजमीन करबला में नमाज को अहया कर रहे हैं, नमाज को कायम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ये बात नहीं जानते थे कि सजदा नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी नमाजें इस बिना पे कबूल की होंगी कि एक ऐसे अमल को इंसान नहीं जानता तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसमें छूट दे दे। लेकिन यहाँ पे उलमा का वजीफ़ा है कि उन तक पहुँचें, उन्हें बताएं, उन्हें कहें कि ये सर पे पट्टी कर लें ताकि ये पेशानी खाक और मिट्टी के ऊपर लगे। अभी ये पेशानी और मिट्टी के दरमियान ये कपड़ा हायल हो रहा है। तो आपने मुलाहिज़ा किया कि अमल में कितनी ज़्यादा अहमियत हासिल है मारिफत को। बेदूने अमल अल्लाह ताला अमले साहले उसमें जन्म नहीं लेता। बस यहाँ पे आपने एक ताबीर यह देखी कि अहकाम शरिया को नहीं जानता, अल्लाह ताला के मुताबिक अमल अंजाम नहीं देगा। दुआ के तरीके को नहीं जानता, दुआ कैसे पढ़ी जाए, क्योंकि अल्फाज़ दुआ हम पढ़ते हैं, दुआ हमने कब पढ़ी। जैसे कि आयतुल्लाह अब्बासी खुरासानी हाफिज़हुल्लाह ताला अपने दुरूस में बयान फरमाते हैं कि आप तो अल्फाज़ दुआ पढ़ रहे हैं, दुआ आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है, वो ईजाद करें। मुमकिन है होंठ आपके बंद हों और नफ्स आपका मुनाजात के आलम में हो, मुमकिन है आँखें आपकी बंद हों लेकिन अल्लाह से फरियादे कर करके आपका नफ्स अपने अल्लाह की बारगाह में तकाजा कर रहा है। ये हकीकी दुआ है, यानी दुआ वही है कि जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम सहरा की तपती ज़मीन के ऊपर, पथरीली ज़मीन के ऊपर लेटा के जनाब हाजर वो पानी की तलाश में चक्कर काट रही हैं, उम्मीद अल्लाह से लगाई हुई है, कल्ब उनका अल्लाह के साथ वाबस्ता है, दुआ अल्लाह से कर रही हैं, कल्ब की निगाहें अल्लाह की तरफ हैं, जिस्म तलाश कर रहा है कहाँ पे पानी मिल जाएगा, कहाँ पे एक कतरा आब मुयसर आ जाएगा, और अल्लाह ताला ने एड़ियाँ रगड़ने की सूरत में वहाँ से पानी को बरामद कर दिया। खुलासे कलाम यही सूरत हमें यहाँ पे जानना चाहिए, इन सायकुम लशत्ता, हत्ता अमले सालेह में भी तुम सारे के सारे ये ना समझो कि चूँकि मैं इन हाजियों के हमरा था, तो मैं इन उम्रा करने वालों के हमरा था, इस लश्कर में शामिल था, हतमन में बख्शा गया। हुस्ने ज़न हमें तो बाइनवाने किसी मोमिन के बारे में, बाइनवाने मुस्लिम यही हुस्ने ज़न रखना है। लेकिन अगर हम इस जहत से देखें कि एक बंदे का नाम है आमाल के एतबार से, तो वहाँ पर इंसान ख़तरे में है, इसलिए वहाँ पर तकाजा करें कि बार इलाहा इसके अंदर तो कोई जान नहीं है जो मैंने अमल अंजाम दिया है, ये तो परवाज़ की ताकत नहीं रखता, ये तो नीयत से खाली है, ये तो कई वाबस्तगियों के साथ मैंने अंजाम दिया, तेरी तरफ तवज्जो कब थी यही नहीं मुझे मालूम, मैं तो तवज्जो ही नहीं सही तरीके से की, लेकिन तू अपने रहम, अपने फ़ज़ल, अपने करम, क्योंकि तेरा फ़ज़ल अज़ीम है, तू मुआफ़ कर देने वाला है, तो इंतहाई रहीम है, मेहरबान है, तो अपने रहमत और फजल की बदौलत मेरे इस हकीर से अमल को कबूल कर ले। या मैं यकबुलुल यसीर, ए वो जो थोड़े अमल को कबूल करने वाला है। वयाफू अनिल कसीर, और कसीर अमल को मुआफ़ कर देने वाला है। इकबल मिन्नी अल यसीर, ये मुझसे छोटा सा अमल कबूल फरमा ले। वाफू अनिल अल कसीर, और मेरे कसीर अमल को मुआफ़ कर दे। बार इलाह, ये तेरे दस्ते कुदरत में है। लिहाजा ये वो दुआ है कि हमारे यहाँ रवायात में गालिबन शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़ नकल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जवान था, उसकी रूह नहीं निकल रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तशरीफ़ ले गए, तो जब उसको देखा तो फरमाया कि क्या देख रहे हो। तो उसने कहा कि मैं एक स्याह तरीन, ख़तरनाक, भयानक, बदसूरत, करी सूरत शख्स को अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जगहों पे इस तरह से कि वालदा करीब थी, तो वालदा से पूछा कि क्या तू राज़ी नहीं है इससे। उसने कहा नहीं, मैं नाराज़ थी इससे। कहा नाराज़ होगी तो ये इसी तरह से तड़पेगा। तो वो राज़ी हो गई। जब वो राज़ी हो गई तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि दुआ के ये कलिमात पढ़ो। क़िबला रुख किया, क़िबला रुख करने के बाद कहा अब। उसने कहा अब भी मुझे वही स्याह चीज़ तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही है, इंतहाई बुरा मंज़र है जिसकी वजह से मुझ में बोलने की भी सकत नहीं हो रही, और छाती जा रही है मेरी तरफ ये करी बदसूरत स्याह शक्ल एक चीज़ जो आ रही है। तो तब ये दुआ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाया कि इसे पढ़ो। तो उसने ये दुआ पढ़ी कि या मैं यकबलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर, इकबल मिन्नी अल यसीर व याफ़ू अनिल अल कसीर, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। जब ये जुमलात पहली दफ़ा पढ़ लिए तो अब पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्या अब भी दिखाई दे रही है? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी दूर हुई है, वो आ रही है, कोशिश कर रही है। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तकरार से कहा कि इसे पढ़ो। फिर तीसरी दफ़ा जब पढ़ी वो चीज़ चली गई, और उसने कहा आप इंतहाई पुरनूर, रोशन, मानूस और ख़ूबसूरत तरीन चेहरे से एक मेरा इस्तकबाल कर रहा है। और उसी वक्त उसकी रूह उसके कफ़से अंसरी से जुदा हो गई। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि ये दुआ जहाँ हमारे इस टॉपिक को बयान कर रही है कि अमले सालेह क्या होता है और तुम क्या गुमान अपने तौर पे किए हुए हो कि ज़ाहरी मुशाबत की बुनियाद पे तुम हुक्म अपने ऊपर लगाते जा रहे हो, अमले सालेह को जन्म दो, अपने अमल से उम्मीद ना बांध लो, अपने अमल के ऊपर तुम तकिया करके ना बैठ जाओ कि ये मुझे अपनी निजात देगा। अमल को अंजाम दो तकिया अल्लाह पर, एतमाद अल्लाह पे, तवक्कुल अल्लाह पे, उम्मीद अल्लाह की तरफ, ये इंसान के लिए लाजिम करार दिया गया है। लिहाजा मज़ीद इसकी तशरीह में भी हम थोड़े से वाक़यात को देखेंगे, लेकिन इस मतलब को आपने देखा कि इत्तखदुश्शयातीन औलियाअहु, उन्होंने शयातीन को अपना औलिया बना लिया, आईमे जौर को इख्तियार किया हुआ, और इधर से अब हिदायत के तौर तरीक़ों में मसा हज भी कर रहे हैं, उम्र भी कर रहे हैं, नमाज शब भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान भी जारी है, और लंबी लंबी नमाजें भी अपने तौर पे पढ़ते जा रहे हैं, या अज़ादारी में भी मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ़ ज़्यारतें भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब आइमा जौर से कल्बी ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, और कल्ब जिसकी इत्तबा कर रहा है, कल्ब जिसको उसवा हसना बनाया हुआ है, कल्ब जिसके मियारात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है, वह आइमतुल जौर हैं, तो फिर ये हिदायत याफ्ता कहाँ पर है फिर? लिहाजा इसमें आप इस आयत को भी अगर मुलाहजा करें तो ये अहमियत की हामिल है। इसके ऊपर पूरा हमारा दर्स आएगा, सूरह निसा आयत नंबर 60 है, सूरह निसा आयत नंबर 60। इस आयत करीमा में अल्लाह सुभान तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इल्लज़ीना, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा, यज़ुमूना, जो ये गुमान करते हैं, अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि वो उन तमाम चीज़ों पर ईमान ले आए हैं कि ए अल्लाह के रसूल, जो आप पर अल्लाह ने नाजिल किए उन सब के ऊपर ये ईमान लाए, वो ये समझ रहे हैं, और आपसे पहले जो जो अल्लाह ने नाजिल किया था उस पर भी ये ईमान लाए, यानी इतने मोहकम अपने आप को मोमिन गुमान कर रहे हैं। लेकिन मसला इनका क्या है? युरीदून अन यतहाकमू इलत ताहूत, अपने फ़ैसलों के लिए, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए ताहूत की तरफ वो बड़े चले जाते हैं, ताहूत के पास जाके वो अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, उनका रुजू, उनका रुख, उनकी उम्मीदें अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तागूत की तरफ है। वक़द उमिरु अई युक फरूबे अई यक फरूबे, जबकि उनको ये हुक्म दिया गया था वो तागूत का कुफ्र करें, इनकार करें। व युरीदु शैतानु अई युदिल्लहुम दलालन बईदा, और शैतान ये चाहता है कि उन्हें इंतहाई दूर की गुमराही में मुबतला करके गुमराह कर दे। लिहाजा यहाँ पे कुरान क्या कह रहा है, तागूत की तरफ रुजू करके कौन से ईमान के ख्वाब देख रहे हो, यज़ुमून का लफ्ज़ इधर इस्तेमाल किया है। यानी ये जो तफसीर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि आइमतुल जौर से ताल्लुक़ कायम करके अब हिदायत के उमूर वो अंजाम दे रहे हैं, तफसीर के दर्स भी हैं, हदीस की शरह भी बयान की जा रही है, इबादत भी अंजाम दिए जा रहे हैं, और समझ रहे हैं हम हिदायत याफ्ता, ये हिदायत याफ्ता नहीं है। यही कुरान करीम ने एक और उसलूब में भी बयान कर दिया कि कुरान क्या कहते हैं, अलम तरा इल्ला लज़ीना, क्या ये तबका आपने नहीं देखा है अल्लाह के रसूल। यानी ये मॉडल और ये स्ट्रक्चर भी उम्मत के दरमियान मौजूद है कि वो ईमान तो ज़ाहरी तौर पर आपके ऊपर जो कुछ नाजिल हुआ है उसका इकरार करते हैं। मसलन नाजिल हुआ शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उम्मत ने इकरार किया, नाजिल हुआ कि ऐलान गदीर में विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तारुफ करा दें, तारुफ कराया और एक तबका ईमान भी ले आया, विलायत को इख्तियार किया, जो रसूल पर नाजिल हुआ हुक्म उसे इख्तियार कर लिया, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शरीयतें और किताबें और अम्बिया व रसूल व औसी अलैहिम सलाम अल्लाह ताला ने भेजे उन सब के ऊपर ईमान ये ले आए। लेकिन इस सब ईमान लाने के बावजूद, अल्लाह के नाजिल करदा चीज़ों पे ईमान लाने के बावजूद ताहूत की तरफ रुजू करते थे, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि इसका कुफ्र करना है, इसके बावजूद वो ये गुमान करें कि हम मोमिन हैं। कुरान करीम यहाँ पर कह रहे ये इनका गुमान है कि हम मोमिन हैं। हर मजलिस में बैठने वाला अज़ादार नहीं है, हर मातम करने वाला मातमी नहीं है, हर हज करने वाला हकीकी माना में हाजी नहीं है, हर ज़्यारत करने वाला हकीकी माना में ज़ाहिर नहीं है, हर नमाज पढ़ने वाला हकीकी माना में नमाजी नहीं है। ज़रूरी है कि ये आमाल सालिहा तब कहलाएंगे जब सालिह की सरजमीन के ऊपर, यानी इस्लाम हकीकी इस्लाम की सरजमीन के ऊपर ये अमल अंजाम दिया जाए। अब आए इस तबके को हम देखते हैं कि जिसको कुरान करीम जिक्र कर रहे हो, आज हम जिसको मौरिद बहस बनाए हुए हैं। पहली आपके सामने आयत बयान होगी, दूसरी आयत मुतालिया करें, ये पहले भी पढ़ी जा चुकी है कि सूरह कहफ आयत नंबर 103 और 104 है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला, इससे पहले भी जो है वो हसब हसब यानी गुमान के तस्करा है, आयत नंबर 102 उसको भी अगर हम पढ़ लें तो बेहतर है। अफा हसब अल्लदीन कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, क्या वो लोग ये गुमान करते हैं, यत्तखिदु इबाद मिन दूनी औलिया, कि वो मेरे बंदों को मुझे छोड़ के अपना औलिया इख्तियार कर लें। इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, हमने काफरीन के लिए ही जहन्नम उतरने की जगह ठिकाना करार दिया है। अब एक अमूमी ज़ाब्ता जिक्र करते हुए कुरान बयान फरमा रहा है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अमाला, क्या हम तुम्हें सबसे खसारे वाला अमल अंजाम देने वालों की खबर ना दें। फिर अल्लाह ताला खबर देता है, और वो कौन है, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयात दुनिया, हयात दुनिया में जिनकी कोशिशें भटक के रह गईं, यानी कोशिशें की उन्होंने, जहमतें उठाईं, मुशक्क़तें उठाईं, लेकिन वो गुमराह होकर रह गई। वहुम यहसबूना, और वो यही ख्याल करते थे, यही गुमान करते थे, अन्नहुम यहसनूना सुनआ, कि वो बेहतरीन अमल अंजाम दे रहे हैं, वो बेहतरीन अमल अंजाम दे रहे हैं। ये बिलखुसूस मोमिनीन के तबके में ये ख़तरनाक तरीन सूरत इख्तियार कर जाती है कि वो कोशिश जो कर रहे हैं वो भटकी हुई है। मसलन तालीम अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी, उसने तालीम का रुख किसी और तरफ कर दिया, आप कोशिश भटक गई। इन मिसालों पे जो मैं आपकी खिदमत में दे पेश करूं, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है कि इसकी तफसीर हम रवायात और दीगर मुफसरीन के बयान से करें, इन मिसालों से आप चंद नुक्ते समझें तो ख़ुद ये मतलब हमारे लिए आश्कार हो जाएगा कि अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयात दुनिया, हयात दुनियावी में इनकी कोशिशें गुमराह हो गई, भटक गई। وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ کس قدر ہم بہترین اور خوبصورت اور اچھے اعمال کرتے رہے ہیں۔ اچھے اعمال کرنے کا انہیں گمان تھا کہ ہمارے سارے اعمال اچھے ہیں، جیسے پہلے والا طبقہ کہ دل میں اس نے بسائے ہوئے آئمت الجور ہیں اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ جتنے بھی اعمال انجام دے رہا ہوں وہ سارے کے سارے بہترین ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی لے لیتے ہیں جو پہلے ہم نے آیت کو مطالعہ کیا کہ آئمت الجور کے نقش قدم پہ مثلا چوری کے، سود کے پیسے کے اوپر، چوری کے پیسوں کے اوپر، یا غصبی پیسوں کے اوپر، یا منشیات فروش، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے مورد زیادہ ہیں کہ منشیات فروش ہیں لیکن بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، منشیات فروش ہیں لیکن ذاکروں کی بہت بڑی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو منشیات فروشی ہے، یہ منشیات فروشی یہ در حقیقت آئمۃ الجور کا کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ ضروری ہے کہ اس مورد میں انسان وہ پہلے آئمۃ ہدا سے تعلق قائم کرے۔ احتجاج تبرسی میں جناب احمد بن اسحاق، بہت بڑی شخصیت اور راوی گزرے ہیں، ان کا واقعہ وارد ہوا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت کرائی، تو قم سے یہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اہل قم کا خمس پیش کیا، تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ایک حصہ خمس کا پاس رکھا اور مثلاً 75% واپس کر دیا، کہا کہ یہ سب مال حرام سے ہے، قبول نہیں کیا امام نے۔ اس دنیا میں جو چیز امام معصوم قبول نہیں کر رہے، آخرت تو فیصلے کی جگہ ہے، توبہ کی گنجائش نہیں ہے، استغفار کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ کیسے امام علیہ السلام قبول کر لیں ایک ناخالص عمل؟ اسی طرح چونکہ اللہ کو دیکھ کے انہوں نے قبول کرنا، چونکہ اللہ تعالی حرام مال کا خمس نہیں قبول کرتا، ادھر ضروری تھا کہ وہ خالص مال ہو، وہ حلال مال سے عمل انجام دیا ہو، قربانیوں پہ قربانی کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں غربا اور فقیروں کو کھلا رہے ہیں اور یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ پورے کے حقوق الناس کھا کے، مال غصب کر کے، اپنے اطراف میں لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کے اب مسجدیں بھی بنائیں، امام بارگاہیں بھی بنائیں، حج بھی کریں، زیارتیں بھی کریں۔ یہ لوگ آئمۃ جور سے اپنے نفس میں ایک رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر آپ مثالوں کو دیکھیں، ان مثالوں سے تفسیر کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف آیت نمبر 104، کہ وہ لوگ کوششیں انہوں نے حیات دنیاوی میں کی۔ ہم پہلے حصے کو بھی دیکھیں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہوں نے سعی کی، یعنی کوششیں کی، کوششیں ختم نہیں ہوئیں، لیکن ان کی کوششوں کا حکم کیا بیان ہو رہا ہے، وہ گمراہ ہو گئیں۔ بالفرض ہم اپنے ایک طلبگی سے شروع کرتے ہیں، سرزمین قم میں تعلیم کی خاطر وہ آیا اور تعلیم حاصل اللہ کے لیے کرنا چاہتا تھا، اور تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کی اصلاح اور ہدایت سے ہمکنار کرنا اور پھر دوسروں کو انذار کرنے کا وظیفہ اپنے لیے رکھتا تھا، لیکن ادھر آ کے وہ اقاموں کے چکر میں پڑ گیا کہ میں پہلے اقامت لے لوں۔ اب اس نے دیکھا آپ نے کہ اپنی کوشش کو، کوشش تعلیم جو اللہ کے لیے ہونی تھی، اسے خود گمراہ کر دیا، وہ اقامے کے لیے شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد کاروبار کے لیے شروع کر دی کہ کاروبار کریں، بس ایک ٹھپا اپنا طلبہ کا لگا لیتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد اس نے ممبر سے کمائی کے لیے کر لی، اندر ہی اندر یہ مثلا منصوبہ بنایا کہ ممبر پہ جا کے کچھ تبلیغ بھی کر لیں گے اور کچھ شہرت بھی ہو جائے گی اور چار پیسے بھی ہاتھ میں آ جائیں گے، مکسچر ایک بنایا۔ یہ نہیں کہتے کہ طالب علم کی نیت نہیں ہوتی کہ پیغام حق نہ پہنچائے، پہنچاتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے اندر یہ ہو کہ میں پیغام حق کے ساتھ ساتھ شہرت بھی حاصل کر لوں، پیسہ بھی حاصل کر لوں، چار میں پاس پیسے بھی آ جائے، یہ شرکیہ ایک عبادت ہو جائے گی، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، خالص راہ خدا میں نہیں ہے۔ اللہ کو خالص چیز چاہیے، خدا کو صحت مند چیز چاہیے۔ جیسے چونکہ پہلے حج میں قربانی واجب ہے، بقیہ واجب نہیں ہے، تو وہاں پہ कमज़ोर और लाग़िर जानवर कबूल नहीं है, ज़ख्मी कबूल नहीं है, अच्छा इसी तरह अपाहज कबूल नहीं है, नाक़िस जानवर कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह को सेहतमंद, तंदरुस्त, तवाना और सबसे अच्छा जानवर चाहिए, ये अल्लाह के लिए लेके आओ। अल्लाह ताला को बताए कि कौन सी इसकी नियतें हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे बनी इसराइल का एक जवान कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं था, तो मूसा अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा फैसला, तो हुक्म हुआ कि गाय को ज़िबह किया जाए। अब नहीं जाए गाय को ज़िबह करना चाहते थे, तो सवाल पे सवाल, अच्छा किस रंग की हो, अभी भी रोशन नहीं हुआ, सवाल पे सवाल, चूँकि नहीं चाहते। इसी तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी में मुमकिन है कि नहीं चाहता कि मैं अल्लाह को सबसे मनपसंद चीज़ दूँ। लन तनालु अल-बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, नहीं तुम बिर तक पहुँच सकते, अबरार तक नहीं पहुँच सकते, नहीं अबरार बन सकते, क्योंकि अबरार कोई शिया कहा गया रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में। तुम बिर को बड़ी नेकी तक नहीं रसाई हासिल कर सकते जब तक अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अभी तो सेकंड हैंड माल सारा इधर पहुंचा देते हैं, मदारिस और मसाजिद को सेकंड हैंड मालों के लिए रखा हुआ है। अल्लाह सुबहान तआला का क्या मैं यार फरमा रहा है, खुदा को सबसे अच्छी चीज़ पसंद है। इसलिए अब ये अपनी कोशिशों में इसने कुर्बानी भी की, कोशिशों के मुताबिक इसने सामान भी मदरसे या मस्जिद या किसी मोमिन जो कि फ़कीर था या हकदार था उस तक उसने पहुंचाया, जहमत उठाई उसने, लेकिन उसकी सही गुमराह है, राह इलाही में नहीं है या मेयार इलाही के मुताबिक नहीं है। यानी एक दफ़ा होता है अल्लाह के लिए अंजाम देना, नंबर दो उस मेयार के सतह पे अंजाम देना जो अल्लाह के लिए अंजाम देने का हक बनता है, उस राह में अंजाम देना यानी एतिकादात भी उसके कामिल हों तब वो एक अंजाम दे, तो तब ये गुमराही से बच सकेगी। लिहाजा आपने मुलाहजा किया कि ये मेयार बहुत अहमियत का हामिल है। इंसान अव्वल एतराफ़ करे अपने वजूद में कि मैं नहीं इस आयत पर कभी ज़िंदगी में अमल कर सका। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे मोहब्बत थी वो नहीं मैंने खर्च किया। मसलन आप करबला में देखें, आपको औज का तारीख बशरियत में इससे बड़ी तफसीर इस आयत की नहीं मिलेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से, कुर्बान कर दी मिम्मा तुहिब्बून। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे से बहुत इज्जत मोहब्बत थी, जान दे देना चाहते थे ताकि इसका दिफा हो जाए, कुर्बान की अल्लाह की राह में। जनाब अली असगर से मोहब्बत थी, शीर खार को कुर्बान किया। जो मालो दौलत, जो सरदारी, जो इज्जत एहतराम वो मौजूद था मदीना में, सब का सब कुर्बान किया। उनके लिबास नहीं रहा और सहरा के ऊपर अल्लाह के कुर्बानी इस तरीके से थी, इस तरह से माशरे को दूर किया और माशरे को अपने से जुदा किया, यानी कुर्बान किया पूरी की पूरी इज्जत और सरदारी और इस दुनिया की हर शय को कुर्बान करके सुरखरु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में किया। यानी यहाँ पे तफसीर हमें दिखाई देती है मिम्मा तुहिब्बून, दीन के लिए जब आए, कीमती वक्त दीन के लिए, कीमती सलाहियत दीन के लिए, कीमती माल दीन के लिए, कीमती बच्चा दीन के लिए, कीमती तरीन चीज़ घर की दीन के लिए। लिहाजा ये अलबत्त दीन में भी अमीन के हाथों को करार दें, ना कि लुटेरों के हाथ में दे दिया। इधर भी तशखीस देना लाजिम है, अमानतदार, अमीन, दीनदार जो अंदर से भी हो, क्योंकि आजकल दीनदार कम दिखाई देते हैं जो अंदर से हो, ज़ाहरी तौर पे तो बहुत बड़ी तादाद है, जो अंदर से दीनदार हैं वो कम हैं। तो खुलासे कलाम यहाँ पर आपने देखा कि अमल कैसे गुमराह होता है, क्योंकि इस आयत की तफसीर में इस बात को जानना लाजिम है। अल्लज़ीन ضل سعيهم في الحياة الدنيا, उनकी गुमराह होगी, वहुम يحسبون انهم يحسنون صنعا, यही समझते रहे सारी मुद्दत कि मैं तो अमल बेहतरीन अंजाम देता हूँ। लिहाजा गुमराह कैसे होती हैं कोशिशें, अव्वल जब अल्लाह के लिए अंजाम ना दें, ये गुमराह हो गई। आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिन रात मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, दिन रात डिग्री के लिए, जॉब के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बाहर जाने के टेस्ट देने के लिए दिन रात एक करके जहमत मेहनत कर रहा है। बाद में कोई कहे कि ये जितनी तुमने जहमत मेहनत की है तो दुनिया थी, आखिरत में कोई तुम्हें अजर सवाब नहीं मिलेगा, आप देखेंगे वो उलझ पड़ेगा हमसे। लेकिन उसे जब ये बात बताई जाएगी कि ये तुम्हारी सारी कोशिश का रुख किसकी तरफ था, वो जॉब की तरफ, माल की तरफ, दुनिया की जीनत की तरफ, घर लेना चाहता था, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छी जगह, शादी, फलां फलां काम मैं चाहता था, मुख्तलिफ वो अंबार एक दुनिया के लगे हुए। उसे कहेंगे तुम फिर दुनिया के लिए कोशिशें की ना, कहाँ तुम्हारी अल्लाह के लिए कोशिश थी। और सूरह हुद में ये ज़ाबिता कुरान ने जिक्र किया, मन कान युरीदुद्दुनिया युरीदुल्हयातद्दुनिया वज़ीनतहा, जो शख्स भी दुनियावी ज़िंदगी और उसकी जीनत को चाहेगा, नुवफ्फी इलैहिम अमालहुम फीहा, हयात दुनियावी में हम उसके अमाल पूरे पूरे उस तक पहुंचा देंगे, यानी दुनिया मिल जाएगी। वहुम फीहा ला युबखसून, और एक ज़र्रा भी कम नहीं करेंगे। बख्स कहते हैं कमी को, एक ज़र्रा भी कम नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखो कि औलाइकल्लज़ीना लैस लहुम फिल आखिरत इल्ला नार, आखरत में फ़कत और फ़कत इनके दोज़ख़ है। व हबता मा सनाऊ फ़ीहा, और जिस हयात दुनियावी में इन्होंने जो उमूर भी अंजाम दिए वह हब्त कर लिए जाएंगे। व बातलुम मा कानू यअमलून, और जो अमल अंजाम दिया करते थे वो सारे बातिल करार पाएंगे। इस टाइम कितनी ऐसे अंजुमन जो इमाम बारगाहों की अंजुमन बनी हुई है, सरदारी चाहती है, अपने हाथ में है। बैरूनी ममालिक तो ऐसी बहुत सारी मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं, चूँकि बानी ने पैसा ज़्यादा लगाया है इसलिए वही ट्रस्टियों का हेड बन के बैठ गया और उसी की बस मर्जी चलती है। उसने तो फिर अपने लिए सारा काम किया, अल्लाह के लिए थोड़ी किया था। लिहाजा ये जब हमारे पास मेयार सामने आता है तो इससे हमें ये पता लगा कि हम पहले इस राज को जाने कि कोशिशें कैसे गुमराह हयात दुनियावी में हो जाती हैं। वाइल्ला इंसान तो गुमान यही करता है कि मैंने भी शैतान को पत्थर मारा है और इस हाजी ने भी शैतान को पत्थर मारा है। ज़ाहरी तौर पे एक अमल में दोनों बराबर के शरीक हैं, तो जो इसके लिए है वही अजर मेरे लिए है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। क्योंकि ये जो अमल सादिर हो रहा है ये पीछे मारिफत और नीयत के ऊपर कायम है, इसकी जहत मुअय्यन होनी चाहिए। क्या पता एक पत्थर मारने वाला हाजी खुद ही शैतान और शैतान शैतान को मार रहा है। मोमिन तो हो पहले, वो एतिकादात उसके कामिल हों। लिहाजा हम इस राह में तहकीक करें कि ये क्या किस तरह से कोशिशें गुमराह हो जाती हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयात दुनिया, हयात दुनियावी में कोशिशें गुमराह हो गईं। जैसे आपने देखा होगा बाज़ूकात इम्तहान करीब आए तो किताब खोल के बस पढ़ने की कोशिश करता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, अपने तौर पर समझता है कि शायद इस तरीके से अदा उसके लिए सारे के सारे मतलब हो जाएंगे या वो इम्तहान बेहतर दे देगा। लेकिन ख्यालों में खोया रहता है और हकीकत में पढ़ रहा नहीं होता। हकीकत में पढ़ाई से वो किनारा कश होता है। यहाँ पे जो कोशिश कर रहा है और एक हकीकी माना में पढ़ रहा है, क्या दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा है? हम जानते नहीं। अच्छा, दोनों जागे तो थे रात को, दोनों ही किताब पढ़ रहे थे, दोनों ही मुबाहसा कर रहे थे, तो दोनों की कोशिशें एक सतह की नहीं थी। एक की गुमराह कोशिशें थीं और एक की राह के ऊपर कोशिशें थीं। इसलिए कुरान ये इन सअयुकुम लशत्ता, या ये बात जो बयान की कि अल्लज़ीन दल्ल सअयुहुम फिल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में पहले कोशिश गुमराह होती है, अब वो गुमान बेशक करता रहे तो उसके गुमान के मुताबिक नतीजा नहीं निकलेगा। ये हमारे पास दो आयात थी, इसमें हम एक दो और नुकात को मुलाहिज़ा करके इस गुफ्तगू को तमाम करते हैं, क्योंकि ये मतलब हमारे लिए आश्कार हो गया कि कोशिशों को हमने बचाना है गुमराही से। गैर अल्लाह के लिए अमल अंजाम देंगे गुमराही से हम किनार हो जाएगी, उस मेयार पे अमल को अंजाम नहीं देंगे जो अल्लाह ताला ने करार दिया है, कोशिश गुमराह हो जाएगी। इसी तरीके से कोशिश करते हुए हमें इन मेयारात के साथ साथ नीयत को खालिस करने की ज़रूरत है, मारिफत हासिल करने की ज़रूरत है। ये दोनों उमूर हमें इंशाअल्लाह ताला हासिल हो जाएंगे। इसमें कुरान करीम एक और बात भी बयान करता है कोशिशों ही के ज़िम्न में, कि इंसान की जो कोशिशें हैं उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर भी उन कोशिशों की देता है। ऐसा नहीं है कि उन कोशिशों को खुदा की बारगाह में कोई हैसियत हासिल ही नहीं है, नहीं। कि जो भी इंसान कोशिश करेगा वकाना सायकुम मशकूरा, जैसे सूरह दहर सूरह इंसान में वारिद हुआ है, या सूरह इसरा आयत नंबर 19 में है, वमन अरादल आखिरा, जो आखरत का इरादा रखता है कोशिश करते हुए, आखरत उसके पेश नज़र है, दुनिया नहीं चाहता, ना दुनिया में शोहरत, ना दुनिया में तारीफ, ना दुनिया का माल, ना दुनिया की यानी उस अमल से दुनिया का हुसूल मतलूब नहीं है। ये ख़ुद कामयाब कोशिश का एक मीज़ान है। वो जो आपकी खिदमत में बयान किया गया ना, मेयारात को हमने जानना है। कामयाबी से हमकिनार होने वाला अमल और कोशिश कब होती है? जब इलाही मेयार पे उतरे। इलाही मेयार में से एक मेयार ये है कि जब अमल अंजाम दे रहे हों तो असलन दुनिया उसके पेश नज़र ना हो। अगर दुनिया में एक शय भी पेश नज़र हो तो यहाँ पर मिलावट आ जाएगी। लिहाजा आखरत को आप बात करने के लिए करें, मन अरादल आखिर व मन अरादल आखिरा, जिसने आखरत का इरादा किया, व सआलहा सअयहा, और आखरत के लिए जो आखरत के मुताबिक है कोशिश की, वह हुआ मोमिनुन, और वो दरहाना के शख्स भी मोमिन था, यानी एतकादात का पहलू मारिफत का पहलू उसका पूरा था, फ़ाउलाइका का नसअयुहुम मशकूरा, यही वो शख्स है कि जिसकी कोशिशों का शुक्रिया अल्लाह अदा करेगा। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला एक तो ख़ुद वो कोशिशें हमारे फ़ायदे में, ऊपर से शुक्रिया भी अल्लाह की ज़ात अदा कर रही है। वो अजीम तरीन ज़ात जिसकी अजमत के सामने पहाड़ भी रीज़ा रीज़ा हो जाते हैं, वो अपने अब्द कह रहे कि सअयुकुम मशकूरा, तेरी इन कोशिशों का शुक्रिया अदा किया गया है, मशकूर हैं तेरी इन कोशिशों के। इसी तरह कुरान करीम ने यह भी बयान किया है कि अगर कोई शख्स अमल साले को अंजाम देता है तो वो जो अमल साले को अंजाम देने वाला शख्स है, मुज़क्कर हो या मोनस, अल्लाह सुबहान तआला की नज़र में उसकी कोशिशें वो कामयाबी से हमकिनार हैं। बस एक तबका हमारे पास कौन आ गया कि जिसकी कोशिशें नाकाम हैं, एक तबका वो आ गया जिसकी कोशिशें कामयाब हैं। कामयाब कोशिशों के लिए ज़रूरी है अव्वल अमल को अंजाम देने का सलीका और तरीका सीखें, अल्लाह ताला की खातिर अमल को अंजाम दे, जितनी नीयत खालिस उतनी बुलंद परवाज। नंबर 3, अल्लाह सुबहान व तआला के मेयारात के मुताबिक उन कोशिश को अंजाम दे। अगर कोशिशें उन मेयारात के तहत नहीं हैं तो कतअन वो कबूल नहीं है। नंबर 4, और ये चौथी चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है, कई वाक़ियात हैं इसके ऊपर, रवायात हमारे पास हैं, अपनी कोशिशों के ऊपर तकिया ना करे, तवक्कुल ना करे, उम्मीद कोशिशों से ना बांधे, रहमत इलाही से बांधे। अपनी कोशिशों को अल्लाह की बारगाह में हमेशा हकीर करार दे, हमेशा। यहाँ तक कि एक वाक़िया है कि बनी इसराइल का एक आबिद था, कई साल वो इबादत करता रहा, फरिश्ते के सामने उसका सवाब जब ज़ाहिर हुआ तो बहुत कलील था, बहुत ही ज़्यादा, तो फरिश्ते को बड़ा ताजुब हुआ कि ये क्या सूरत हाल है। तो अल्लाह सुबहान व तआला, यानी वाक़े मैं मफ़ूमन बयान कर रहा हूँ उस रवायत के अंदर जो वारिद हुआ है, कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला से तकाज़ा के बारे लिया, ये क्यों ऐसा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये एक दफ़ा अपने गुनाहों के ऊपर नादिम होता और अपने अमल को मेरे सामने हकीर करार देता, ये एक हकीर करार देना इन कई 40, 50, 70 या हज़ारों सालों की इबादत से बालातर है। लिहाजा अपने अमल के ऊपर अल्लाह ताला की बारगाह के सामने उस अमल को हकीर करार दे, नाचीज़ करार दे, कोताही का अमल उसे करार दे, गुनाह के मर्तबे पे गोया के रखे कि परवरदिगार तेरी अजमत के सामने इसकी क्या हैसियत। लिहाजा ये 4 चीज़ें हम उसमें मद्देनज़र रखें। कुरान करीम ने एक और तबका भी मुतारिफ़ कराया है, और वह तबका है कि वज़य्यन लहुमुश शैतान व आमालहुम, शैतान ने उनके लिए उनके आमाल वो मुज़य्यन करके करार दे दिए, खूबसूरत करके पेश कर दिए। और ये जो तबका है इसको कुरान करीम में तकरार से ज़िक्र किया गया है, मसलन सूरह अनाम आयत नंबर 43। ये इसी के ऊपर इख्तिताम इंशाल्लाह करते हैं, क्योंकि बकिया आयात पढ़ने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है अभी, लेकिन ये अमल अम्बिया अलैहिस्सलाम की हिदायत, ख़ुद उनके वजूद मुबारक से अगर हिदायत ले रहे हों तब भी ये अमल जो शैतान आमाल खूबसूरत करके पेश कर देता है इंसान के लिए माने बन जाते हैं। फिर इंसान को जब तकलीफ़ें पहुँचती हैं, हादसात आते हैं, तो अंदर से गुनाहगार तरीन शख्स भी जाग उठता है, लेकिन जिसके आमाल को खूबसूरत करके शैतान ने उसके नफ्स के अंदर फैला दिया, वो उससे बाज नहीं आता। जैसे ये जो हमारे पास आयात हैं, ये अगर इन आयात के आगाज़ को देखें तो आगाज़ में कुफार का तस्करा नहीं है, रसूलों का तस्करा है, हवादिस का तस्करा है, इसके बावजूद शैतान उन्हें मुज़य्यन करके चला गया। इसलिए आप पहली आयत देखें, सूरह अनआम आयत नंबर 43, इरशाद बारी ताला होता है, फ़लाउला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रउ, कहते हैं कि वो वक्त याद करो कि हमारी जब ये मुसीबतें इनके ऊपर आईं, तज़र्रउ, इन्होंने गिरिया अहुज़ारी की, चीखों पुकार की, यानी रुजू किया अल्लाह की तरफ, वलाकिन यानी रोए धोए, चीखे चिल्लाए, ये तज़र्रउ रोए धोए चीखे चिल्लाए, वलाकिन कसत कुलूबहुम, लेकिन फिर इनके दिल क्या हो गए, कसी हो गए, ये कसावत शकावत बगावत, इन तीन को रब्त देने की कोशिश करें, खुद गौर व फिक्र करें, अपने नफ्स के ऊपर गौर व फिक्र करें, खुद इंसान पहुँचता है कसावत, कौन सी चीज़ें कसावत का बायस बनती हैं, शकावत की तरफ ले जाते हैं, शकी होता है तो फिर बगावत सरकशी तागुतियत की तरफ आ जाता है। वलाकिन कसत कुलूबहुम, उनके दिल क्या हो गए, कसी हो गए, सख्त हो गए, वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून, जो अमल अंजाम दिया करते थे शैतान ने वो अमल उनके लिए इंतहाई खूबसूरत करके पेश कर दिए, इंतहाई बेहतरीन करके पेश कर दिए। अगर शैतान उन अमाल को खूबसूरत रंग में ढाल के पेश ना करे, वो उस अमल के ऊपर शिद्दत से नहीं डट सकते। लिहाजा बाज़ुकात ऐसा होता है कि बुरा अमल अच्छा बना के पेश करते हैं, इसमें कबाहत ही किया है। जैसे एक शख्स है, पैदा होते साथ ही उसने हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में देखना शुरू की, बड़ा हो गया, जवान हुआ, और अब गलत तरीक़ों से लड़कियों और ख़वातीन से रवाबित इजाद करता है, और अब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, कहते इसमें बुरा ही किया है, क्योंकि शैतान ने इस तरह से मुज़य्यन कर दिया, वो अपना हक़ समझने लग गया। इसी तरीके से अफराद में लड़ाई हो और वो दुश्मनी में दूसरे को हद से तजावुज़ कर जाए, कहते इसमें बुरा ही किया है, गलत ही किया है। अभी इसराइल से पूछें कि क्या तुमने एक जहन्नम आबाद की हुई है ज़मीन के ऊपर, क्या किस बुरे तरीके से मज़लूम बच्चों को और मज़लूम मुसलमानों को कत्ले आम कर रहे हो, नस्ल कुशी एक किस्म की कर रहे हो, इबलीस भी तुम्हारे अमाल को देख के शैतान भी शर्मिंदा हो रहा है। उसका जवाब यही है कि इसमें हरज ही किया है, इसमें बुरा किया है। वज़य्यन लहुमुल अमाल हम, वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून, या बाज़ जगहों पर आया अमाल हम, कि इन अमाल को शैतान ने उनके लिए मुज़य्यन कर दिया। ये तो बुरे अमाल है, बाज़ वक़्त अच्छे अमाल मुज़य्यन कर देता है। ये अलकाफ़ी में तफसीली वाक़िया वारिद हुआ है, पहले भी ये दुरूस में इशारा किया जा चुका है कि इबलीस ने एक इंतहाई ख़तरनाक अपने नथनों से आवाज़ निकाली, ख़तरनाक तरीन ऊँची, तो उसके चीले जो हैं भागे भागे आ गए, यानी वो जो उसने इमाम बनाए हुए थे वो सारे के सारे उसके आइमतुल जौर आइमतुल शयातीन वल कुफ्र जमा हो गए, और कहा कि सैयदी व मौलाई, क्या मसला पेश आया, हम तो समझे कि मौत का वक्त आन पहुँचा आपके। तो इबलीस ने कहा कि फ़लाँ आबिद को देखो, क्योंकि उनकी रसाई है, दूर दराज इलाकों तक देखने की रसाई है, किस तरह से इबादतें कर रहा है, कोई चीज़ माने ही नहीं है इबादतों में, देख के तो आओ। तो एक बोला मैं बहकाऊँगा, कहा कैसे बहकाओगे, अब देखें मुज़य्यन करने हैं ना अमाल, उसने गलत अमल को मुज़य्यन करके पेश किया, कहा खातून के ज़रिए, इबलीस ने कहा नहीं तू नाकाम है, फेल है। दूसरा शैतान आया, उसने कहा कि मैं इसको बहकाऊँगा, तो इबलीस ने पूछा कैसे तू बहकाएगा, कहा कि मैं इसको शहवात के ज़रिए और माल की शहवत माल से बहकाऊँगा, माल खातून नहीं माल के ज़रिए से बहकाऊँगा। इबलीस ने कहा नहीं तू भी नाकाम है। तीसरे से कहा, तीसरे ने कहा कि बिलफर्ज मैं शोहरत से इसे बहकाऊँगा, शोहरत का इसे तालिब बनाऊँगा, शोहरत के पीछे ये भागेगा। तो इबलीस ने कहा नहीं तू भी नाकाम है, तुम तीनों इसे नहीं बहका सकते, ना खातून ना माल ना शोहरत, ये बुरे अमाल थे जो मुज़य्यन करके अक्सर लोग, ख़वातीन को तो हबाइलु शैतान कहा गया है, शैतान की रस्सियाँ हैं, कुत्ते को जिस तरह फंदा डाल के पट्टा डाल के खींचते हैं, ख़ातून की मोहब्बत इसी तरह उजागर करके शैतान इस तरह जलील व ख़ार करके बंदे को खींचता है। चौथा खड़ा हुआ, इबलीस ने पूछा तू कैसे बहकाएगा, कहा कि मैं आबिद बन के जाऊँगा, मुजाहिद के पास मुजाहिद, आबिद के पास आबिद, आलिम के पास आलिम, इनकलाबी के पास मैं इनकलाबी, आज़ादार के पास आज़ादा, आबिद बन के जाऊँगा। इबलीस ने कहा तू कामयाब है। वो गया वहाँ पे इबादत शुरू कर दे, दिन रात इबादत। तो ये बड़ा हैरान कि थकता ही नहीं है ये। तो इसने पास गया, पूछा कि जब ये बड़ा मुतासिर हो गया इस शैतान से, क्योंकि इबादत आबिद गुजारों के लिए इबादे में गया और शब व रोज़ इबादत शुरू कर दी। इसलिए हर इबादत गुजार को ये ना समझे कि वो मोमिन है, शैतान भी इबादत गुजार बन के आ जाता है। तो उसने कहा थोड़ा साइड पे मुझे नमाज़ें पढ़ने दो, इतनी भी फुर्सत उसने नहीं दी। देखा तीसरा दिन आ गया तो उसके पाँव पड़ गया। उसने कहा कि एक गुनाह मैंने किया था, जब से वो गुनाह किया है तब से ये हालत है इबादत की, इस मकाम पर पहुँच गया। तो उसने जिना का फिर उसे एक इशारा किया। खुलासे कलाम देखें किस तरह से खूबसूरत अमल को किया उसने। इबलीस ने ख़ुद इस इबादत को खूबसूरत करके उसके सामने किया। बाज़ुकात मसलन आप महफिल में बैठे होते हैं, एक गलत काम किसी से हो गया, यहाँ पे शैतान अमर बिलमारूफ़ नहिल मुनकर के सारे फ़लसफे आयात रवायात आपको याद दिला देगा ताकि इसकी बड़ी महफिल में तोहीन कर दें। यहाँ पे अब वो अपने तौर पे जज्बात के आलम में आके पूरा के पूरा बयान अपना जाहिर करेगा। उधर से एतराज़ हो कि मैं तो अमर बिल मारूफ़ नहीं मुनकर कर रहा हूँ, मैं तो फलाम अल अंजाम दे रहा था, इसमें कबाहत किया, चलो लड़ाई शुरू हो गई। लिहाजा यहाँ पे जो अपने अमल को मुज़य्यन, चूँकि मुज़य्यन करें तो अच्छा समझेगा ना। ये जो कुरान की आयत कह रही है वहुम या सबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, वह जो उन्हें अपना अमल बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है, वो किसने अच्छा दिखाया? कुरान वाज़े कह रहे कि ये शैतान ने दिखाया। इसी तरह कुरान ने जिक्र किया है तल्लाहि लकद अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, अल्लाह की कसम खा के कि अल्लाह की कसम हमने उम्मतों की तरफ आपसे पहले भी रसूल भेजे थे। फ़ज़य्यना लहुमु शैतानु अमालहुम, उनके अमाल शैतान ने मुज़य्यन कर दिए। फ़हुवा वलीयुहुम अल्यौमा, आज भी यही शैतान उनका वली है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक तरीन इनके लिए अज़ाब है। लिहाजा मुज़य्यन एक वो अमाल है जो अल्लाह ने करके दिखाई हैं, मलाइका के सामने मुबाहात अल्लाह करता है। जैसा कि ये रोज़ेदार शदीद ज़हमत और तकलीफ़ में नडाल हो के सो जाएगा, मुबाहात अल्लाह ताला फरिश्तों में करता है, देखो तो सही मेरे इस अब्द को। तोलानी जो सजदे करता है अल्लाह ताला मुबाहात फरिश्तों के सामने करता है। जो ज़हमत और मुशक्क़त उठा के, नींदें बर्दाश्त करके, भूख बर्दाश्त करके राह इलाही में एक अमल को अंजाम दे रहा है, अल्लाह ताला उसके अमाल को फरिश्तों के सामने खूबसूरत अमाल को आश्कार फरमाता है। लिहाजा एक अमाल है जो अल्लाह की नज़र में जीनत बख्श हैं, और वह क्या है कि हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, ईमान को अल्लाह ने तुमसे पसंद किया है कि ईमान इख्तियार करो। वज़य्यनहुम फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों की खूबसूरती, तुम्हारी दिलों की ब्यूटी और हुस्न व जमाल वो ईमान को करार दिया है। ईमान दिल में है, अमल जैसा सादिर होगा अच्छा है। ईमान से आरी है, जितना ज़ाहरी तौर पर अदाकारी करते हुए खाज़े और खाशे बन जाए उसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। लिहाजा शैतान का एक तज़य्युन है और एक जीनत जो अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ है वो है। इसलिए वो लोग जो नहीं इन मेयारात को जानते वो अपने अमाल को बड़ा अच्छा समझते हैं, क्या खूबसूरत तकरीर, क्या खूबसूरत किताबत और लिखाई, क्या खूबसूरत मेरा मसलन फ़लाँ अमल, मसलन आज़ादारी, फ़लाँ मैंने जो गरीबों को खिलाया, ख़ुद अपने अमाल लोगों के सामने बयान करके उसके खूबसूरत नुकात ज़ाहिर करेगा। यहाँ पे ये जो गुमान कर रहे हैं कि खूबसूरत है, ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में उनकी कोशिशें गुमराह थीं, गुमराह हो गई, और वो उन गुमराह कोशिशों में समझ रहे थे बड़े अच्छे अमाल किए, शैतान ने हकीकत में ये अमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए थे। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।